नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही कार्यक्रम स्पोर्ट्स कैन में। अगले 15 मिनट पेरिस ओलंपिक की तो खबरें होंगी ही, और भी खबरें लेकर आए हैं। स्वीकार कीजिए लवनी निगम का नमस्कार, और खेल खबरों पर चर्चा के लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं द हिंदू से उत्तरा गणेशन। उत्तरा नमस्कार, स्टूडियो में आपका स्वागत है। और आज पेरिस ओलंपिक में अच्छी खबर, एक और ब्रॉन्ज मेडल आया।
बिल्कुल, और शूटिंग के लिए अच्छी खबर है, क्योंकि पिछले दो ओलंपिक्स में जिस तरह से
सूखा था,
बिल्कुल, और जितना क्रिटिसिज्म हो रहा था, क्योंकि 20-21 खिलाड़ी आप भेज रहे थे, 18-20-21 खिलाड़ी, और फाइनल तक भी नहीं पहुंच पा रहे थे, तो शूटिंग के हिसाब से भारतीय शूटिंग के लिए बहुत अच्छी खबर है।
जी, तमाम खबरों पर चर्चा करेंगे। पहले सुर्खियां। भारतीय निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने पेरिस ओलंपिक्स में 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में भारत को कांस्य पदक दिलाया। हॉकी में भारत ने आयरलैंड को 2-0 से हराया। बैडमिंटन में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रैंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी अगले दौर में पहुंची। तीरंदाजी में महिला वर्ग में भजन कौर ने प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। और भारत और श्रीलंका के बीच तीसरा और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच जारी। तो शुरुआत पेरिस ओलंपिक से ही करते हैं। खेलों के इस महाकुंभ में आज शुरुआत हुई हमारी कांस्य पदक से। निशानेबाज मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने 10 मीटर एयर पिस्टल मिक्स टीम स्पर्धा में भारत को दिलवाया ये कांस्य पदक। आज पेरिस में भारतीय खिलाड़ियों का और कैसा प्रदर्शन रहा, इस बारे में सीधे बात करते हैं वहीं मौजूद हमारे सहयोगी महेंद्र लालस से। महेंद्र नमस्कार। आज देखा जाए तो शुरुआत बहुत अच्छी हुई, कांस्य पदक से शुरुआत हुई, जिसकी बहुत जरूरत थी निशानेबाजी में खासतौर पे। लेकिन अब तक अगर हम 8:30 बजे तक बात करें तो अमित पंघाल ने थोड़ा निराश किया बिल्कुल लास्ट में जो इवेंट था।
बिल्कुल सही कह रही हैं आप। बॉक्सिंग में अमित से उम्मीदें थी क्योंकि वो अच्छे बॉक्सर हैं, लेकिन आज उनके सामने जो पैट्रिक थे जाम्बिया के, जो पिछले कॉमनवेल्थ गेम्स थे उसके फाइनल में उन्होंने इनको हराया था, लेकिन आज उन्होंने उसका बदला लिया। और पैट्रिक तो ये तक कहते नजर आए कि अमित कोई बहुत अच्छे मुक्केबाज नहीं है। बहरहाल ये निराशाजनक था। अमित ने अपनी इस हार के बाद बात भी नहीं की, काफी निराश हताश दिखे
जी।
अभी दो बाउट्स हमारे बाकी हैं, उम्मीद करते हैं कि उनका अच्छा प्रदर्शन करेंगे। प्रीती का भी है और एक बाउट और जासमीन का भी है, उम्मीद करते हैं कि ये अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो जासमीन अगर क्वार्टर फाइनल में आ जाती है और दूसरा बाउट जो है उसमें अगर क्वार्टर फाइनल में वो जीत जाती है तो थोड़ा सा भारत के लिए आज खुशखबरी आएगी, लेकिन अमित ने अपने प्रदर्शन से जरूर निराश किया।
और महेंद्र, आप निशानेबाजी जहां से अच्छी खबर है उसकी बात करें, मनु भाकर ने तो कल ही वो सूखा खत्म किया था निशानेबाजी जिसकी हम प्रतीक्षा थी, आज एक और बड़ी उपलब्धि।
बिल्कुल सही कह रही हैं आप, लेकिन एक बात यह कि मनु भाकर के इर्द गिर्द ही हमारी निशानेबाजी की सफलताएं केंद्रित हैं। दूसरे निशानेबाजों ने, खासतौर पर ट्रैप के निशानेबाजों ने आज हमें निराश किया, उन्होंने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया और बहुत अच्छी रैंक्स पर भी नहीं है। तो इतना बड़ा दल था, बहुत सारी उम्मीदें थी, तो मुझे लग रहा है कि मनु भाकर के कंधों पर बहुत ज्यादा जोर आ गया है इन ओलंपिक खेलों का, और दो पदक जो उन्होंने दिलाए हैं, लेकिन दूसरे निशानेबाजों से भी बहुत उम्मीदें, उन्होंने अब तक अच्छा प्रदर्शन तो नहीं किया लवनी ने उतरा
जी। जाहिर तौर पर आज देखा जाए अगर हम डबल ट्रैप की भी बात करें तो वहां से भी कोई खास अच्छी खबर नहीं है। पृथ्वीराज क्वालिफिकेशन राउंड में 21वें स्थान पर रहे, महिला वर्ग में भी कोई खास वो हम अच्छी खबर नहीं कह सकते। अब सारी उम्मीदें क्योंकि मनु भाकर का एक और इवेंट भी बचा है जो शायद कल है, 25 मीटर। वो कहते हैं ना, दिल मांगे मोर, तो फिर उन्हीं पे सारी उम्मीदें टिकती हैं
जी। जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, वही बार बार जिक्र हो रहा है कि मनु ने डिलीवर किया इस ओलंपिक में और एक तरह से हमारे तिरंगे का मान रखा है, लेकिन दूसरे शूटर्स को भी अच्छा प्रदर्शन करना पड़ेगा। और थोड़ी सा जिक्र भजन कौर का भी कर लेते हैं। भजन कौर इस ओलंपिक में लयताल में दिखी और आज उन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया और प्री क्वार्टर फाइनल में वो आ गई हैं और अच्छा निशाने लगा रही हैं, दबाव में कम दिखी। अंकिता भगत ने तो अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, लेकिन भजन कौर अगर इसी धैर्य से खेलती रही तो भजन कौर आगे जा सकती हैं। और एक थोड़ा सा जिक्र हम बलराज पवार का भी करेंगे। देखिए, रोअर है, अकेले रोअर थे भारत के, और इन्होंने जो भी अच्छा प्रदर्शन किया, नेशनल रिकॉर्ड भी बनाया, अपना खुद का ही कीर्तिमान तोड़ा। ये अलग बात है कि सिंगल स्कल्स की रोइंग स्पर्धाएं इतनी मुश्किल होती हैं कि उन्हें मेडल की उम्मीद तो करना व्यर्थ होता है, लेकिन फिर भी रैपेश आजमी आए और बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। तो बलराज पवार और भजन कौर, इन दो का प्रदर्शन भी आज हम अच्छे प्रदर्शन में भारत के लिए गिनेंगे।
भजन कौर से तो आगे उम्मीद करते हैं कि वो मेडल राउंड तक जाएं। अब बात हॉकी की करें महेंद्र, अगर हॉकी में आयरलैंड को हमने 2-0 से हराया, कल अर्जेंटीना से मैच, लेकिन अब जो अगला मैच होगा वो उत्तरा से भी हम बात कर रहे हैं, उत्तरा आपसे जुड़ेंगे इस कार्यक्रम से। अब मैच कठिन है और बहुत जरूरी है हॉकी से, जिस शुरुआत की हम लोग को उम्मीद थी पेरिस ओलंपिक में वो शायद नहीं हुई थी।
बिल्कुल, पहले उत्तरा से हम कह देते हैं कि उन्हें यह याद किया जा रहा है क्योंकि स्टैंड हम लोग अक्सर साथ हुआ करते थे, तो उत्तरा की पेरिस में कमी है। और ये जरूर है कि देखिए जो आज की जीत है उसके बाद हम क्वार्टर फाइनल में तो आ गए, ये तय मानिए, लेकिन वहां से थोड़ा सा सफर कठिन होगा। और बेल्जियम और ऑस्ट्रेलिया वाले मैच अब इस लिहाज से उतने महत्वपूर्ण नहीं है क्योंकि अगर उसमें हम लोग रैंकिंग में जरूर ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन क्वार्टर फाइनल में वैसे भी किसी भी रैंक पे आप जाएं तो आपके लिए नॉकआउट मुकाबले हैं। लेकिन हाँ, थोड़ा सा कुछ पैचेस में हमने अच्छा प्रदर्शन किया, कुछ पैचेस में बुरा भी किया। और हरमनप्रीत के गोल्स के अलावा आप देखिए बहुत ज्यादा हमारे फॉरवर्ड्स भी बहुत ज्यादा आगे, अच्छा उनको पेनेट्रेशन नहीं मिल रहा है, तो उम्मीद करते हैं कि जो हमने कमियां अभी रखी उनको अब पूरा करेंगे और आगे जब क्वार्टर फाइनल के आगे का सफर बहुत मुश्किल है। बहरहाल ये अच्छा है कि आज की जीत के बाद हम लोग ये कम्फर्टेबली क्वार्टर फाइनल में आ गए।
महेंद्र जी, उत्तरा बोल रही हूँ, कैसे हैं आप?
जी उत्तरा एकदम बढ़िया, आपकी कमी है।
नहीं, हम मेंटली और इमोशनली वहां पे हमेशा हैं।
जी,
और आप वहां पे गए हैं एशियन गेम्स में, आप गुड लक थे वहां पे, भारत ने 100 का आंकड़ा पार किया था, तो उम्मीद है कि इस बार भी आप अपना लक लेके चल रहे हैं और हम डबल डिजिट में कम से कम पहुंच पाएंगे।
बहुत उम्मीद है, बहुत उम्मीद है, और देखिए पूरे देश की उम्मीद इन एथलीट्स के तो साथ है ही। जी
महेंद्र जी, आज जिस तरह से मैच अगर आपने देखा हो इंडिया आयरलैंड वाला, क्या आपकी टीम में किसी से बात हुई है कि बहुत ही दो अलग अलग तरह के हाफ खेले गए थे, पहला हाफ पूरी तरह से डोमिनेट किया, दूसरे हाफ में पूरी तरह से हम दबे हुए थे और पूरी तरह से आयरलैंड चढ़ के खेल रही थी, क्या इस बारे में कोच से या किसी प्लेयर से आपकी बात हुई कि वो क्या कह रहे हैं?
जी हाँ, इनसे लगातार बात हो रही है, लेकिन जो फुलटन है वो बार बार यही बात कह रहे हैं कि जो उनकी जो आपको स्ट्रेटेजी पता ही है, वो हमेशा से कहता है कि डिफेंस एंड अटैक, मतलब वो डिफेंस में ज्यादा जोर देते हैं। और आपने देखा होगा अर्जेंटीना वाले मैच में खासतौर पर डिफेंस ही डिफेंस नजर आया। आज जब शुरू में जब आए तो आप देखिए कि कितनी अच्छी नेचुरल जो भारतीय हॉकी इन्होंने खेली और उसका रिजल्ट भी मिला, लेकिन उसके बाद में अब देखिए ये कोचेज क्या सोचकर आते हैं और दूसरे हाफ में क्या रणनीति लेकर आते हैं, और कभी डिफेंस में खेलते हैं और फिर एक खतरा ये भी है जैसे अर्जेंटीना ने हमारे साथ किया था कि अब डिफेंस के बाद आपने डिफेंस कर तो दिया, लेकिन उसके बाद जब काउंटर में आप अटैक करने गए तो काउंटर में गोल्स हो जाते हैं, तो फुलटन का उस पर बड़ा जोर है कि काउंटर में गोल नहीं हो, तो लिहाजा थोड़ा थोड़ा डिफेंसिव कोच है वो, और वो नजर भी आ रहा है। पर उनकी स्ट्रैटेजी अब देखिए, डिलीवर करेंगे तो हम अच्छा कहेंगे, डिलीवर नहीं करेंगे तो हम उनको बुरा कहेंगे, लेकिन ये फुलटन की स्ट्रैटेजी आप जानती हैं।
लेकिन इतना डिफेंसिव खेल के जो 10 पेनल्टी कॉर्नर कंसीड कर दिए थे, उस पे
बहुत
पूछने, क्योंकि आप डिफेंस अपना स्ट्रांग कीजिए ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसको स्ट्रांग करने के चक्कर में अगर आप सामने वाली टीम को 8-10-12 पीसीज दे देते हैं तो बड़ी टीमों के साथ ये इतनी आसानी से नहीं बचपन
हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगा आगे का सफर।
जी, लेकिन उत्तरा जी यहाँ दोनों चीजें हैं, एक तो आपको पता है कि हमारे रशर खासतौर पर अमित रोहिदास की, उनके कलेजे की तारीफ करेंगे आप, जर्मन पिच भी रशर्स हमारे इतने अच्छे हैं, और दूसरा आप ये देखिएगा कि ये जो पेनल्टी कॉर्नर अब हम काउंट कर रहे हैं ये री पेनल्टी कॉर्नर, एक मिलता है फिर उसका रशर जाता है दोबारा हो जाता है, तो कंटिन्यूएशन में उनका आंकड़ा बढ़ता जाता है। लेकिन पेनल्टी कॉर्नर का डिफेंस भी हमने अच्छा किया है, ये पेनल्टी कॉर्नर कन्वर्जन में जरूर हरमनप्रीत आपको ध्यान है कि प्रेडिक्टेबल हो जाते हैं, तो अकेले वही उन्हीं के कंधे पर सारा दारोमदार है, तो वो प्रेडिक्टेबल रहते हैं कि उनके शॉट्स आपने देखा होगा कि गोलकीपर के राइट की तरफ थोड़ा सा नीचे जाते हैं, तो बहुत बार वो एंटिसिपेट कर लेते हैं
जी।
पावर है उनके पास लेकिन बहुत ज्यादा वेरिएशंस नहीं, ये आपको अच्छी तरह पता है।
और हॉकी से थोड़ा आगे बढ़ें क्योंकि अगर महेंद्र हम हॉकी पे बात करते रहेंगे घड़ी की सुइयां बहुत तेज भाग रही हैं। बैडमिंटन की बात करते हैं, बैडमिंटन में आज पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी चिराग शेट्टी आगे पहुंच गई है, क्वार्टर फाइनल में तो ये जोड़ी पहले ही पहुंच गई थी, अपने ग्रुप में टॉप पे 21-13 से जीते, लेकिन आज दोनों ही खिलाड़ियों का कहना था कि आज टफ मैच था और आगे के लिए हमें और मेहनत और रणनीति बनानी होगी।
जी देखिए, ये दोनों खिलाड़ियों से हम तो स्वर्ण की उम्मीद कर रहे हैं कि भी गोल्ड लेकर आएंगे, लेकिन बैडमिंटन है और ओलंपिक है तो कुछ कह तो नहीं सकते, बहरहाल अब तक तो इन्होंने जो प्रदर्शन किया है अपने नाम के अनुरूप ही किया है और उम्मीद करते हैं कि इसी को वो आगे जारी रखेंगे
जी। लेकिन महिला वर्ग की अगर बात करें तो वहां अश्विनी पोनप्पा और क्रिस्टो की जोड़ी ने निराश किया और ये बाहर हो गई तनिषा क्रिस्टो।
इन्होंने मतलब ये लगातार हारती आई हैं और देखा जाए तो कॉम्बिनेशन भी बहुत ज्यादा नहीं था और डबल्स में महिलाओं का जो भी मुकाबला था कड़े तो होते हैं लेकिन कम से कम ये कि एक दो मैचेस जो क्लोज होते हैं वो अगर आप निकालते हैं तो आपको पता चलता है कि आप ओलंपिक के स्तर के खिलाड़ी हैं। तो ये बात उत्तरा जी हमें ईमानदारी से स्वीकार करनी पड़ेगी कि अश्विनी पोनप्पा और क्रिस्टो की जो जोड़ी है वो ओलंपिक स्तर की नहीं थी और उसका परिणाम आपके सामने है
जी। अब मेरे ख्याल से सिंगल्स मुकाबले भी शुरू हो जाएंगे, महेंद्र पीवी सिंधु वगैरह का मुकाबला होगा, क्या उम्मीदें अगर हम बैडमिंटन में आप पूछें?
लक्ष्य सेन तो देखिए अच्छा खेल रहे हैं, दुर्भाग्य से एक मैच उनका फोरफीट हो गया, इस वजह से शायद उन्हें जोनाथन क्रिस्टी से खेलना पड़े, देखते हैं। लेकिन ये बड़े जज्बे का बड़े कलेजे का खिलाड़ी है तो लक्ष्य सेन से उम्मीदें है ही। और सिंधु आप जानती हैं कि वो सब आप सब जानते हैं कि वो एक बड़े बड़े गेम की खिलाड़ी है। सिंधु अतीत में भी आपने देखा है, आपने टोक्यो में देखा है, आपने रियो में देखा है, सिंधु डिलीवर करती है। मतलब वो जब बड़ा टूर्नामेंट आता है तो वो डिलीवर करती हैं।
लेकिन पिछले कुछ टाइम से वो थोड़ा स्ट्रगल भी कर रही हैं और चोट से भी परेशान थी ना।
बिल्कुल, लेकिन सिंधु से हम लोग आशा लगा सकते हैं, लक्ष्य सेन सिंधु और ये जो हमारी सात्विक की और चिराग की जो जोड़ी है इससे उम्मीदें लगा सकते हैं कि ये एटलीस्ट हमें कम से कम ब्रॉन्ज तक ले जाए
जी। तीरंदाजी में हमने अभी बात की, भजन कौर का आप कह रहे थे प्री क्वार्टर फाइनल में पहुंचे, उम्मीद है कि वो भी आगे बढ़ेंगे। मुक्केबाजी में अमित पंघाल ने आज बिल्कुल निराश किया, लगातार जाम्बिया के पैट्रिक चिनियम्बा के जो है चुनौती का वो बिल्कुल नहीं सामना करने पड़ा। अब जैस्मीन का मुकाबला है लगभग 9:30 बजे, क्या उम्मीद है उसमें?
जी देखिए आपको बताया कि ये मुक्केबाजी और खासतौर पर ओलंपिक मुक्केबाजी कितनी मुश्किल होती है और छोटे छोटे देशों के मुक्केबाज, क्योंकि बॉक्सिंग बहुत लोकप्रिय खेल है, कुछ ऐसे देश जिनकी जनसंख्या भी शायद हमारे एक दिल्ली के आसपास के किसी कस्बे के बराबर होगी, उन देशों के बॉक्सर्स भी आकर यहाँ अच्छा प्रदर्शन करते हैं। तो बहुत टफ मुकाबले हैं लेकिन उम्मीद करते हैं कि ये अगर निकाल लें तो हो सकता है कि आगे हमारे लिए कुछ अच्छा कर सकें।
महेंद्र जी अगर हम आर्चरी की ही बात करें तो आज अंकिता भगत का भी था जिन्होंने निराश किया और कल शायद दीपिका कुमारी है जिनको शायद ये एडवांटेज है कि वो सीधा प्री क्वार्टर्स में सीडेड है, पर उनसे क्या उम्मीदें हैं क्योंकि टीम इवेंट में तो दोनों ने बहुत निराश किया था, टीम में भी केवल भजन कौर ने थोड़ा सा इम्प्रेस किया था।
उत्तरा जी दरअसल दीपिका से दरअसल सब लोग जो भी खेल के जानकार हैं, जो खेल प्रेमी है खासतौर पर, कि दीपिका के लिए ये नहीं कह सकते कि उन पर ओलंपिक का दबाव है, वो अनुभवी खिलाड़ी है और उनको ओलंपिक में लाया भी इसलिए गया है कि वो एक अनुभवी खिलाड़ी हैं और अनुभव का फायदा मिलना चाहिए। अनुभवी खिलाड़ी मतलब आप ओलंपिक के दबाव का सामना कर सकें और डिलीवर कर सकें, क्योंकि बहुत धैर्य की जरूरत होती है तीरंदाजी में।
जी लेकिन आपने देखा जब कल आपको कौन से महत्वपूर्ण मैच है और क्या कल किसी मेडल की उम्मीद कल कर सकते हैं हम?
देखिए शूटिंग में तो चल ही रहा है और कुछ आगे उम्मीद करते हैं कि टेबल टेनिस में मनिका बत्रा आगे चलेंगी तो पदक की उम्मीद तो हमें हमेशा रहती है और खासतौर पर अभी तो शूटिंग का ही मामला चल रहा है कि हर रोज जब तक शूटिंग की स्पर्धाएं खत्म नहीं होती हम उम्मीद करते हैं कि आज भी कोई भारतीय निशानेबाज पदक ले आए।
जी और हॉकी का चलते चलते एक बार अब हमें एक दिन रेस्ट है, परसों हमारा मुकाबला बेल्जियम से होगा तो शायद रेस्ट करके नई रणनीति से हम आएंगे।
बिल्कुल सही कह रही हैं, बेल्जियम देखिए टफ है लेकिन यहाँ आपको आश्चर्य होगा कि ग्रेट ब्रिटेन भी ड्रॉ खेल रहा है
जी।
तो मतलब ऐसा नहीं है कि और साउथ अफ्रीका देखिए, अब साउथ अफ्रीका ने भी जैसी टीम ने भी अच्छी अच्छी टीमों के यहाँ छक्के छुड़ाए, तो बहुत सारी जगहों पर यहाँ पर ऐसी टीम्स ओलंपिक एक आप देखिए कि हर टीम ऐसा करती है कि आप
रोकेंगे क्योंकि घड़ी की सुइयां, प्रोग्राम लगभग खत्म होने का समय हो रहा है और भारत श्रीलंका के बीच जो 30 और अंतिम 2020 क्रिकेट मैच चल रहा है, श्रीलंका ने टॉस जीता है, पहले गेंदबाजी का फैसला किया है। महेंद्र बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने का और तमाम पेरिस से ताजा जानकारी देने का।
बहुत बहुत धन्यवाद उत्तरा और लवलीन।
धन्यवाद महेंद्र।
उत्तरा आपका भी धन्यवाद, उम्मीद करते हैं कल और अच्छी खबरें लेकर आएंगे, फिलहाल शुभरात्रि।